ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सॉन्ग बुक है क्या? सॉन्ग बुक यहाँ पर नहीं। कदाचित् कालिंदी तटा विपिना संगीतक रवो मुदाभिरी नारी बदना कमला कमला अस्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा अमर पति गणेश अर्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भव तू मैं। कदाचित कालिंदी कैसे है? कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत रवो मुदाभिरी नारी बदन कमला स्वाद मधुप रामा शंभु ब्रह्मा अमर पति गणेश चर्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भव तुमे जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भव तुमे भगवान जगन्नाथ कभी कभी कालिंदी नदी के तटों पर समस्त कुंजों में संगीत वादन करते हुए बजाते हुए और गाते हुए संगीतात्मक मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। वे ग्वालिन ब्राज बलाओं के कमल सदृश मुखों के अमृत रस का आस्वादन करते हुए महान हर्षोल्लास का अनुभव करते हुए एक भौरे के समान हैं। उनके चरण कमल लक्ष्मी जी शिव जी ब्रह्मा जी इंद्र एवं गणेश जी जैसे महान व्यक्तियों द्वारा पूजे जाते हैं। कृपया ब्रह्मांड के वे स्वामी मुझे भी दृष्टिगोचर हो जाए। जय श्री श्री गौनिताय राधाराष्ट्र बिहारी सीतारामण हनुमान की जय। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्जिनिमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। जय जय जगन्नाथ। जाया जाया जागनाथ सचिरानंदन जाया जाया जगन्नाथ सचिरानंद त्रिभुवन करी जर चरण वंदन
चरण वंदन
त्रिभुवन करी जर चरण वंदन
जय जय जगन्नाथ सचिरानंदन
जय जय जगन्नाथ सचिरानंद
केह बले पुरबसे रावण बधिला केह बले पुरबसे रावण बधिला केह बले पुरबसे रावण बधिला
नीला चले नीला चले नीला चले शंख चक्र गदा पद्म धर
नदिया नागरे दंड कमंडलुकार जय जगन्नाथ सचिदानंदन
जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन
केह बले पुरबसे रावण बधिला
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 गोलके जाबै भालिला प्रकाश करीला
वैभवलीला प्रकाश करीला
गोलोकेरा वैभवलीला प्रकाश करीला
गोलोकेरा वैभवलीला प्रकाश करीला
श्री राधार भावे वे गोर बतार श्री राधार
अवतार
श्री राधार भावे वे गोरबतार शिराधार
पहिला अवतार
कृष्ण नाम गुरा करिला प्रचार।
हरे कृष्ण नाम
नाम गोरा करिला प्रचार।
हरे कृष्ण नाम गोरा करिला प्रचार।
जय जय जगन्नाथ सचिदानंद। वासुदेवा घोषा बोले जोड़ीबे निहास्त। वासुदेवा शा बोले करी जोड़ी हास्त। वासुदेवा घोषा बोले करी जोड़ा हास्त।
वासुदेव कोसा बोले करी जोड़ा हास्त।
जे गौरा से कृष्ण से जगन्नाथ।
जे गौरा से कृष्ण से जगन्नाथ।
जय गौरा से कृष्ण से जगन्नाथ।
जय गौरा से कृष्ण से जगन्नाथ।
जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद। त्रिभुवन करी जार चरण बंदना। त्रिभुव जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रमा। जय जगन्नाथ।
हरे कृष्ण। सर्वप्रथम हमें जगन्नाथ तत्व समझना चाहिए। भगवान जगन्नाथ समस्त जितने भी भगवान के अवतार हैं सब उसमें इनका नाम नहीं है। ये हैं बड़े स्पेशल। शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि जो जगन्नाथ जी हैं वैकुंठ धाम में उनका कहीं स्थान नहीं है। जगन्नाथ जी केवल यहीं पर भौम धाम में है, लाचल क्षेत्र में। जैसे नरसिंह भगवान का नरसिंह वैकुंठ है, राम वैकुंठ है, लेकिन जगन्नाथ जी का ऐसा नहीं है। परंतु क्या कहे कि जो भक्त जगन्नाथ भक्त जगन्नाथ का सेवा करते हुए जगन्नाथ का चिंतन करते हुए शरीर त्यागता है वो सीधे गोलोक धाम को प्राप्त करता है। जगन्नाथ जी के भक्त गोलोक वृंदावन को प्राप्त करते हैं। बहुत दिन तक मुझे कंफ्यूजन रहा, आज भी है, उत्तर नहीं मिल पाया है। और वह यह है कि जगन्नाथ जी का जो आविर्भाव है जिसको नारद जी ने देखा था वो द्वारिका में देखा था। आप लोग कथा सुने होंगे कि किस प्रकार से एक समय रोहिणी जी वृंदावन से आई थी और सब स्त्रियों से ब्रज के विषय में सुनना चाहती थी। हालांकि वे सब द्वारिका में थी लेकिन ब्रजमयी थी और सुभद्रा जी को बाहर रखा गया था देखने के लिए कि कोई आकर के डिस्टर्ब ना करे, पहरादारी करने का। और जब सुभद्रा जी सुन रही थी ब्रज के पशु पक्षियों का, गोपियों का विरह दशा, कृष्ण के विरह दशा को, तो उनका शरीर पेल हो गया, पीला पड़ गया। वैसे ही बलराम जी आए, वे सुने तो भी स्तब्ध रह गए। वैसे ही कृष्ण आए, तो यह दर्शन नारद जी किए थे द्वारिका में, जो स्वर्गमयी है। लेकिन यह जो भाव था उस समय, इमोशन था सब लोगों का, वो ब्रज का इमोशन था, ब्रज लीला का था। द्वारिका में लोग थे लेकिन उस समय ब्रज में थे, वहां पर ऐश्वर्य नहीं था, केवल माधुर्य ही माधुर्य था। इसीलिए कहा गया है कि जगन्नाथ जी के जो भक्त होते हैं उन्हें सीधे गोलोकवास मिलता है, गोलोकवास के अधिकारी होते हैं जगन्नाथ जी के भक्त। और उसी बात को यहां पर वासुदेव घोष, भगवान चैतन्य महाप्रभु के संबंध में जो ये भजन गाए हैं, जय जय जगन्नाथ सचिरनंदन, गौर हरि और सचिनंदन, गौर हरि और जगन्नाथ में कोई अंतर नहीं है। जैसे कृष्ण में और चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है। ब्रजेंद्र नंदन जयी सची सुत हैल से, जो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर हैं वही सचिनंदन गौर हरि हैं, और जो सचिनंदन गौर हरि हैं वही साक्षात जगन्नाथ हैं। त्रिभुवन करे जार चरण वंदन, त्रिभुवन वंदनीय है भगवान श्री कृष्ण, नंदनंदन श्याम सुंदर गौर हरि जगन्नाथ। नीला चले शंख चक्र गदा पद्मधर, नीलाचल में भगवान जगन्नाथ शंख चक्र गदा और पद्म धारण करते हैं, और वही जगन्नाथ सचिनंदन के रूप में नवदीप में कमंडलू और दंड धारण कर करके सन्यास वेश धारण किए। अब भगवान के माधुर्य के बाद अब ऐश्वर्य का प्रकट किया जा रहा है, ऐश्वर्य बात बताया जाता है कि हाँ बोले पूर्वे रावण अवधिला, कुछ लोग कहते हैं कि यही प्रभु पूर्व काल में यानी त्रेता युग में आकर के रावण का वध किए। गोलोक के रव वैभव लीवा प्रकाश करीला, गोलोक का वैभव प्रकाश किए यहां पर नीलाचल क्षेत्र में जगन्नाथ जी के रूप में। श्रीराधार भावे एवे गौरव अवतार, भगवान चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधिका के भाव में आए, यह जानने के लिए कृष्ण, यह जानने के लिए कि उनमें कौन सी मधुरता है जिसके लिए भक्त लोग हमेशा ललायित रहते हैं, उनके इर्द गिर्द रहते हैं, उसमें भी श्रीमती राधिका। तो राधा भाव को जानने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। हरे कृष्ण नाम गौरव करीला प्रचार, और हरे कृष्ण महामंत्र का वे प्रचार किए। वासुदेव घोष हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, बोल रहे हैं, इस बात कह रहे हैं कि जय गौरव से कृष्ण से जगन्नाथ, जो गौरचंद्र सचिनंदन चैतन्य महाप्रभु हैं वही साक्षात ब्रजनंदन श्याम सुंदर कृष्ण हैं, और वही जगन्नाथ हैं। तो ये जगन्नाथ श्याम सुंदर के रूप में विभिन्न प्रकार के लीला किए, उसमें से एक लीला का वर्णन इस श्लोक में किया गया है और वह लीला है जमुना तीरा बनचारी। कालिंदी तट पर ब्रजंगनाओं के साथ में जो लीला किए भक्ति विनोद ठाकुर, एक ग्रंथ लिखे, इसका नाम है चमत्कार चंद्रिका। उस ग्रंथ में इस लीला का दिग्दर्शन कराया गया है कि मार्गशीर्ष का महीना था जनवरी फरवरी का, उस समय गोपियां एक व्रत कर रही थी और वो व्रत कुछ नहीं था, उन दिनों कृष्ण का राधा रानी से मिलने पर बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन था, राधा रानी का विवाह हो चुका था अभिमन्यु गोप से, जटिला और कुटिला उनके क्रमशः सास और देवरानी क्या ननद थी, कौन ननद थी, जटिला कुटिला, कुटिला ना, मैं कंफ्यूज होता हूं कभी, एनीवे जटिला और कुटिला क्या नाम है, एक झगड़ा लगाने वाली और एक जटिल है, उसको सुलझाना बड़ा मुश्किल है, वो जटिला है और कुटिला मतलब झगड़ा लगाने वाली। तो कुटिला को शंका हुआ, मैं संक्षिप्त में कथा बता रहा हूं, बहुत बड़ा कथा है, कि क्यों ये लोग जाती हैं सुबह सुबह। एक दिन बल्कि राधा रानी से पूछी, गोपियों से पूछी, तो उन्होंने कहा कि यदि तुम्हें आना है तो तुम भी आ सकती हो, एक हम लोग व्रत करते हैं जाड़े के दिन में, सुबह सुबह जमुना जी में स्नान करते हैं ठंडा पानी में, वहां हीटर नहीं था लेकिन जमुना जी का पानी गर्म होता है जाड़ा के दिन में, सुबह सुबह सूर्य से पहले, तुम भी आ सकती हो। लेकिन वो तो व्रत का बहाना था, वो तो कृष्ण से मिलने जाया करती थी, कृष्ण वहां पर निकुंज बिहारी हैं, प्राय कहते हैं राधा माधव कुंज बिहारी, और यहां पर राधा माधव निकुंज बिहारी हैं। कुंज और निकुंज में अंतर यह है, गांव में पुरुषों के स्थान अलग होता है, स्त्रियों का स्थान अलग होता है, तो ये स्त्रियों का स्थान है जहां पर कुछ दिखाई ना पड़े, पर्दा हो सब तरह से, वह निकुंज कहलाता है। जिस ग्रोह को राधा रानी बनाती है, जहां राधा रानी विहार करती हैं, वो निकुंज कहलाता है, और जहां पर कृष्ण विहार करते हैं वो कुंज कहलाता है, राधा माधव कुंज बिहारी, वो कुंज में विहार करते हैं, लेकिन राधा रानी कृष्ण के साथ में निकुंज में विहार करते हैं। तो निकुंज बिहारी वहां पर लीला कर रहे थे और अन्य गोपियां पहरा दे रही थी, तो सुबह सुबह कुटिला नंदगांव गई पता लगाने के लिए कि श्याम सुंदर क्या कर रहे हैं। जय श्री श्री गौनिताय की जय, श्री श्रीदास बिहारी की जय, सीताराम चरण मान की जय। कुटिला को मालूम था कि उसकी भौजाई राधा व्रत के लिए गई है जमुना किनारे स्नान करने के लिए, लेकिन वह विश्वास नहीं हो रहा था कि राधा व्रत के लिए स्नान करने गई है, वो कुटिल दिमाग की थी, तो उसे डाउट था कि कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर है। तो ब्रज जब गई नंदगांव पता लगाने के लिए, तो पता चला कि कृष्ण भी नहीं है, तो उसे पूरा शंका हो गया। अब उधर ही आई श्याम सुंदर के पदचिन्ह को पहचानते हुए आ रही थी, तो ललिता विशाखा आदि जो गोपियां थी वे बाहर थी, और बाहर वे पारा दे रही थी। जब उन्होंने देखा कि कुटिला उधर से आ रही है, तो लोग भागते भागते आई और श्याम सुंदर को और श्रीमती जी को इसका इन्फॉर्मेशन दिया। तो ले फटाफट, राधा रानी तो उसी में थी, निकुंज था, लेकिन कृष्ण वहां से अदृश्य हो गए। कुटिला जब आई तो सीधे बिना रोक टोक के बैम दरवाजा धक्का दे करके और प्रवेश की। राधा रानी को आश्चर्य हुआ, उन्हें मालूम था लेकिन फिर आश्चर्य प्रकट कर रही हैं वहां पर। वहां पर कुटिला बहुत गुस्सा में थी, उसे पूरा इंफॉर्मेशन था कि नंदगांव से नंद का छोरा आया है और इधर हमारी प्रिय भाभी आई है। सनातन गौर खड़ा हो जाओ, रात को पहरा दे रहा था तुम क्या? तो वहां पर देखा कि सब मालती लता, मालती फूल और अन्य पुष्प बिखरे हुए हैं चारों तरफ से, और कृष्ण का नूपुर दिखाई पड़ा। तो नूपुर उठाई और उल्टा सुल्टा बोलने लगी। तब ब्राह्मण ने कहा कि कुटिला, तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि किसी के घर जाना हो तो दरवाजा खटखटा कर जाना चाहिए। तुम ऑलरेडी अपने मन में कुछ बैठा करके आई हो, तो तुम्हें सब कुछ वैसे ही दिखाई पड़ रहा है। तो हल्ला वल्ला किया और वह नूपुर लेकर के गई, कही कि आज मैं नहीं छोड़ने वाला, कुछ तो पहचान मिल गया, मैं बहुत दिन से प्रूफ ढूंढ रही थी, अब प्रमाण आज हमको मिल गया। तो लेकर के जा रही थी, तब तक से कुछ दूरों पर भगवान कृष्ण समझ गए उसका तान भान देख करके कि जरूर कुछ ये पॉलिटिक्स करने वाली है, आखिर है कुटिला। तो भगवान तुरंत अभिमन्यु गोप का रूप धारण कर लिए, उसके भाई का, और देखे बड़े वेग से आ रही है। तो भगवान ने कहा कि बहन क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों बड़ी घबराई हो, क्या हुआ तुम्हें? कहा भैया आज मैं पकड़ ली हूं, आज मैं पकड़ ली हूं। कहा क्या पकड़े हो? कहा कि आज मैंने देखा कि वह नंद का छोरा उस निकुंज में था। हट, तो झूठ बोल रही है, तो ऐसे ही बोलती रहती है भावे के विषय में। कहा नहीं नहीं, मैं प्रमाण लेकर के आई हूं। कहा प्रमाण क्या है? कहा देखो ये नूपुर है। कहा अच्छा, तो बात सही है। तो नूपुर कृष्ण ने ले लिया जो कि अभिमन्यु का रूप धारण किए थे। कहे हमको तो, और मैं सीधे, मेरा बछड़ा भाग गया था, वो बछड़ा को ढूंढते हुए इधर आया था सुबह सुबह, अच्छा हुआ कि तुम्हें हमको दे रही हो। मैं मथुरा जा रहा हूं और महाराज कंस को बताता हूं, और तुम जाओ अपने भाभी को कुछ मत बोलना। लेकिन जो घर में आए तो तुम लोग थोड़ा सावधानी से घर में रहना है, उसे डिस्टर्ब मत करना, नहीं तो शायद भाग जाए या कुछ भी हो जाए। मैं मथुरा से आऊंगा, लेकिन साथ साथ तुम लोग ध्यान रखना को डिबोची जो कृष्ण है वो कोई रूप बना सकता है, वो मेरा भी रूप बना सकता है, तो देखना घर पर वो ना जाए, सावधानी से पहरा देते रहना, मां और तुम दोनों, मैं मथुरा जा रहा हूं। इधर कुटिला गई राधा रानी के साथ में, राधा रानी को लेकर गई। राधा रानी थोड़ा संकित थी कि जटिला से कहेगी, सब लोगों से कहेगी, ढोल पिटवाएगी, लेकिन राधा रानी का कृष्ण पर विश्वास था, कृष्ण जरूर कुछ करेंगे जिससे कि उनका रक्षा हो सके। तो वह गई और अच्छा तरह से राधा रानी का देखभाल हो रहा था, लेकिन मां और बेटी बाहर रेडी थे कि कहीं ये कृष्ण आ ना जाए। भैया तो मथुरा गए हैं, लेकिन उस समय अभिमन्यु गोप कहीं बाहर गाय चराने गया था, और इधर कुटिला जाकर के अपने मां से सब बात बताई और कही भैया मथुरा गए हैं महाराज कंस के पास, वहां से पुलिस लेकर आएंगे और फिर बाद में नंद के छेरों के बताया जाए क्या करना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा है कि देखना कहीं नंद का छोरा हमारा रूप धारण करके ना आ जाए, तो हम लोगों को बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। तो वो मिर्चा कूट करके सब लेकर के रेडी थी और डंडा लेकर के रेडी थी। उतने में 8-9 बज गया था, उधर से अभिमन्यु गोप आया, असली अभिमन्यु जो था वो आया। तो जट कुटिला में देखो देखो मां देखो ये आ गया, देखो ये हमारे भाई का रूप धारण करके आया है, बदमाश आ गया। अब ज्यों ही अभिमन्यु गोप आया, ये मिर्चा जो था उसके मुंह पर दे मारी और डंडा मारने लगे, गाली गलौज करने की, ये रोना शुरू किया कि मां तू क्या कर रही है, बहन तू क्या कर रही है। वे गाली गलौज करो तो भगा दिए। कुछ समय के बाद कृष्ण आए, और कृष्ण आए और नहीं, पहले कृष्ण एक्चुअली आ गए थे और वे अंदर चले गए और कहे तुम लोग यहीं पहरा देना, वो बदमाश है कहीं हमारा रूप धारण करके ना जाए। तो कृष्ण श्रीमती राधिका के साथ में अंदर विहार कर रहे थे और बाहर ये मां और बेटी दोनों पहरा दे रही थी। बाद में जब असली अभिमन्यु आया तो उसका यह दशा हुआ। तो ये विस्तृत चर्चा है। तो जमुना किनारे विभिन्न प्रकार का लीला भगवान करते थे, कभी कभी गोपियों के साथ में, कभी कभी ग्वाल बालों के साथ में। हम लोग छोटे थे तो अवध बिहारी का एक कविता पढ़ते थे, यह कदम का पेड़ अगरमा होता जमुना तीरे। जो गांव के लड़के हैं इस आनंद को समझ सकते हैं कि नदी के किनारे यदि वृक्ष हो, तालाब के किनारे वृक्ष हो। सुलोचन याद है, आप गए हो, आप शहर वालों पता नहीं होगा। तो लड़के वृक्ष के सबसे ऊंचे टहनी पर चढ़ करके और ऊपर से पानी में बूम कूदते हैं, आनंद आता है। आप में से कितने लोग ऐसा किए हो? असीम जी आपने किए हैं, किए ना नरहरी? बड़ा आनंद आता है। तो कृष्ण भी कदम के पेड़ पर चढ़कर, कदम का पेड़ इलास्टिक होता है, टूटता नहीं है, नीचे ऊपर आ सकता है। झूला झूलने के लिए अभी झूला का समय आएगा, जंप करने के लिए कदम का पेड़ बड़ा अच्छा होता है। यह कदम का पेड़ अगर मां होता जमुना थी, कृष्ण उस पर से कूदते, उनकी इच्छा ऐसी थी। तो विभिन्न प्रकार के लीला भगवान किए जमुना किनारे, जमुना भगवान की प्रियसी हैं। तो यहां पर कुछ बातों को यहां पर बताया गया है। भगवान जगन्नाथ यानी श्याम सुंदर कभी कभी कालिंदी नदी के तटों पर समस्त कुंजों में संगीत वादन करते हुए और गाते हुए संगीतात्मक मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। वे ग्वालिन ब्रज बालाओं के वहीं से बांसुरी बजा करके गोपियों को बुलाते भी थे। बंसीवट स्पेशल है, उन श्याम सुंदर के चरणों को रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति यानी इंद्र गणेश इत्यादि उनका अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं। यह लालसामयी प्रार्थना है तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा उच्चरित है, तो उनकी लालसा है कि जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। वही भगवान, वही ब्रह्मांड के स्वामी मुझे भी दृष्टिगोचर हो जाए, मैं भी उनको देख सकूं। एक आचार्य भक्त इन्हीं जगन्नाथ अष्टकम का वर्णन करते हुए जो असल अंतिम श्लोक है उसको तोड़ तोड़ करके वर्णन किए हैं। मैं अंतिम श्लोक को संक्षिप्त में केवल लूंगा, और सब तो कथा में बता दिया संक्षिप्त में। जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भव तू मैं मतलब मेरा, तू मतलब निस्संदेह, भव मतलब होवे, पथगामी मेरे रास्ता को दिखाने वाले, मेरे रास्ता को बताने वाले, नयन। नयन शब्द केवल आंख के लिए ही नहीं है, समस्त इंद्रियों के लिए ये नयन शब्द यूज किया जाता है, ज्ञान प्राप्त करने का। मुझे ज्ञान प्राप्त हो, भगवान जगन्नाथ जो जगत के स्वामी हैं उनके कृपा से मुझे, हमारी समस्त इंद्रियां उनकी सेवा में लगे, मुझे ज्ञान प्राप्त हो। जैसे मन से, हम लोग मन से भी देखते हैं, मन भी हमारी एक इंद्रिया, मनोसष्टान इंद्रियाणी, मन एक इंद्रिया है, तो मन से भी देखते हैं। जैसे ब्रह्मचारी आश्रम में अपना बेड देखना हो तो यहीं बैठे आंख बंद कर देखा आ जाओगे, है ना विष्णु? आज कहां सोया था? ऑफिस में, आश्रम में, याद आ जाएगा, मतलब आंख बंद करते याद आ जाएगा तुरंत। तो आंख तो यहां पर है लेकिन मन से देख सकते हैं, कान से देख सकते हैं सुन करके, है ना, जिह्वा से देख सकते हैं स्वाद कर करके, त्वचा से देख सकते हैं स्पर्श कर करके, जाड़ा है गर्मी है क्या है। तो समस्त इंद्रियां ज्ञान प्रदान करती हैं, इसीलिए इनको ज्ञान इंद्रियां कहा जाता है, ज्ञान अर्जित करने के लिए। तो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, हे जगन्नाथ स्वामी आप जगत के स्वामी हैं, आप जगत को कंट्रोल कर रहे हैं, आप कृपा करके मेरे इंद्रियों को भी कंट्रोल करने में मुझे सहयोग करें। कि इंद्रियां जो है अनकंट्रोल है, इंद्रियों कंट्रोल होना बड़ा मुश्किल है। तो जगन्नाथ भगवान से हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग तो उस स्थिति पर नहीं है कि ऐसा कामना जैसे चेतन महाप्रभु ने किया वैसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हां यदि इंद्रियां हमारी बस में हो जाए तो वह कामना हो सकती है। लेकिन उस कामना से पहले, अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, डिजायर करने से पहले डिजर्व करना जरूरी है। तो हम लोग के लिए डिजर्व और चेतन महाप्रभु के लिए डिजायर। तो हम लोग अपने इंद्रियों को बस में करने, हमारी सेंसेज प्यूरिफाइड हो जाए, यही कामना हमें करनी चाहिए भगवान जगन्नाथ से। जगन्नाथ स्वामी की। सो संक्षिप्त में यह रहा। अब जैसा कि मैं बताया था कि आज हम लोग गुंडीचा मार्जन का शुभ दिन है, तो उस संबंध में हम लोग आज वार्ता करेंगे। भगवान जगन्नाथ बड़े ही अद्भुत हैं, उनका सब कुछ अद्भुत है, और भक्तों पर उनकी कृपा बहुत ही अद्भुत है। उनका मन नहीं भरा मंदिर में रह रह करके, क्योंकि कम ही लोग दर्शन करने आते थे, सबको कल्याण करना चाहते थे कि चलो चलते हैं रोड पर टहलने के लिए, वहां ज्यादा लोग देखेंगे हमको, ज्यादा लोगों पर कृपा बरसाने के लिए भगवान अपने रथ पर सवार होते हैं, पैदल नहीं चलते हैं रथ पर। आखिर तो हैं वहां पर कुरुक्षेत्र से रथ पर आए हुए थे, कुरुक्षेत्र में गोपियां रथ से खींच रही थी। और एक दूसरा कारण है कि रथ जब ऊंचा है तो नीचे से लोग देख सकते हैं, यह भी कारण है, नीचे रहेंगे तो थोड़ा धक्का मुक्की होगा रथ पर रहेंगे तो। लेकिन ऐसा वर्णन किया गया है कि महाराज इंद्रदुम्न जिन्होंने जगन्नाथ जी को एक किया था, इस धराधाम पर जगन्नाथ जी को अवतरित किया था, ब्रह्मा जी से वे तीन वरदान मांगे थे। एक वरदान कि उनका हाथ कभी सूखे नहीं, हाथ हमेशा गीला रहे, खाते रहें, और जब तक से दर्शनार्थी हैं तब तक से उनका पट बंद ना हो, और तीसरा कि मुझे कोई संतान ना हो कि क्लेम करे कि मेरे पिताजी ने मेरे मंदिर बनाया था। यही भजन करने का तरीका है, अहंकार शून्य या करो ये भजन, दयालिता चैतन्य बोले नाच रे हमार मन, अहंकार शून्य हो गया। महाराज इंद्रदुम्न तो चाहे गुंडीचा जी हो जो उनकी धर्म पत्नी है, चाहे कोई भी हो, आज महारानी है तो पहले आएंगी दर्शन करने के लिए, लेकिन वहां पर ऐसा बात नहीं था, सब लोग दर्शन करें, चाहे राजा हो चाहे रानी हो, राजा झाड़ू जरूर मारेंगे आज भी, लेकिन ऐसे नहीं कि रानी है तो वो भी झाड़ू मारने वहां पर आएंगे, वो भी सामान्य लोगों के समान, लेकिन भगवान जगन्नाथ स्पेशल मर्सी तो करते ही हैं। तो भगवान जगन्नाथ गुंडीचा जी पर स्पेशल मर्सी करने के लिए उनके भवन पधारते हैं, और एक दो दिन नहीं रहते हैं, सामान्य रूप से अतिथि लोग तीन दिन रहते हैं, हमारे यहां बिहार में कहते हैं तीन दिन का पहुना और चार दिन के केहुना, तीन दिन तक संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, और चौथा दिन केहुना मतलब पता नहीं कौन है, क्यों आ गया, लोग बात करना शुरू करते हैं, तो तीन दिन तक ठीक है। भगवान सात दिन तक, एक हफ्ता तक गुंडीचा जी के द्वारा सेवित हैं। अब भगवान आने वाले हैं तो हम लोग अपना घर तो अपने अनुसार सफाई रखते ही हैं, लेकिन जब कोई विशेष अतिथि आने का होता है तो थोड़ा ज्यादा सावधानी से सफाई करते हैं, अतिथि आ रहा है। उसी क्रम में हरेक साल गुंडीचा जी का जो महल है वहां पर जब पता चला कि जगन्नाथ जी आने वाले हैं, यहां पर सात दिन रहेंगे, तो उनके लिए गुंडीचा जी रानी थी, अपने राजमहल में भी भगवान के लिए एक छोटा ही मंदिर, लेकिन मंदिर बनाई, यहां पर उसका वर्णन किया गया है कि मंदिर का एक कितना बड़ा था, द टेम्पल इनसाइड इज अबाउट 36 क्यूबिट बाय 30 क्यूबिट, एक क्यूबिट मतलब डेढ़ फीट होता है, तो 36 बाय 30 कितना हो गया, कितना स्क्वायर फीट हुआ, 1000, चलिए एनीवे, हाँ ऑलमोस्ट 1000 हो गया, 1000 स्क्वायर फीट का मंदिर बना था जगन्नाथ जी के लिए उन्होंने, लेकिन उनका पैलेस बहुत बड़ा था, पैलेस बताया गया 288 क्यूबिट बाय 215 क्यूबिट का पैलेस था, उसमें ये मंदिर था जहां पर भगवान विराजेंगे। उनके बाद भगवान के लिए किचन भी बनाया गया था, दर्शन हाल बनाया गया था, सब कुछ वहां पर व्यवस्था किया गया था जगन्नाथ जी के लिए, सात दिन तक वहां रहने वाले हैं, सब कुछ व्यवस्था होनी ही चाहिए। तो प्रत्येक साल जगन्नाथ जी का वहां पर सेवा होता है, और उससे पहले मार्जन होता है गुंडीचा मंदिर का। एक साल की बात है, भगवान चैतन्य महाप्रभु जितने बंगाल, जब भगवान चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर के और जगन्नाथपुरी में रहने लगे तो एक गौड़ीय वैष्णव बंगाल के जितने भक्त लोग थे प्राय जब मन करे तब टिकट कटाकर चले जाते थे, टिकट नहीं पैदल चले जाते थे उसमें महाप्रभु को देखने के लिए। तो महाप्रभु को अच्छा नहीं लगा, तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बुलाकर कहे कि आपको मैं बंगाल का जीवीसी बना रहा हूं और सभी बंगाली वैष्णवों को कह दो कि जगन्नाथपुरी ना आए, उधर ही प्रचार करो, साल में एक बार रथ यात्रा के दिन आना बस। बहुत सुंदर परपट प्रभुपाद जी दिए हैं कि वैष्णवों को चाहिए बार बार भागकर वृंदावन मायापुर जगन्नाथपुरी न जाए, प्रचार कार्य में जाए, प्रचार इंपॉर्टेंट है। कभी कभी बैटरी चार्ज करने के लिए चले जाएंगे, बार बार भाग कर मत जाओ, ये उचित नहीं है। मैं बताऊंगा कहां, कोई जानना चाहे बताऊंगा परपोटो कहां है, खैर उस पर नहीं बात करना है। तो रथ यात्रा का समय था, उस समय नवदीप से बहुत भक्त लोग आए थे, बहुत भक्त, हजारों संख्या में भक्त लोग आए थे, और नीलाचल में भी चैतन्य महाप्रभु के बहुत भक्त थे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु एक आचार्य, एक वैष्णव का लीला कर रहे थे। आनंद गोविंद आपके पीछे कौन है, वो पिलर के नीचे आराम सो रहा है? ना ना ना, वो पीछे कौन है? वो बड़ा आराम से सो रहा है, कोई देख नहीं रहा है, पिलर के पीछे है। आगे आ जाओ, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु एक आचार्य का कार्य कर रहे थे। आचार्य का काम है प्रचार में आचरण के द्वारा ज्यादा प्रचार करे। यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्त एव इतर दो जन स यत प्रमाण गुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। भगवान गीता में भी आचरण पर बहुत जोर दिए हैं। देखिए आचरण में चार विशेषण लगाए, यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्त एव इतर दो जन, दो बार यद यद और दो बार तत्त आचरण के लिए, लेकिन प्रमाण के लिए इंस्ट्रक्शन के लिए स यत प्रमाण कुरुते लोकस तत् अनुवर्तते, केवल दो बार। तो आचरण पर बहुत भार दिया गया है। आपने आचारी प्रभु जगते सिखाए, चैतन्य महाप्रभु स्वयं आचरण करके और सिखलाते थे लोगों को। इस लीला में भगवान चैतन्य महाप्रभु कई एक इंस्ट्रक्शन दिए हैं अपने आचरण के द्वारा और अपने वाणी के द्वारा। आचरण के द्वारा इंस्ट्रक्शन किए हैं और अपने वर्ड के द्वारा भी, और उन उन इंस्ट्रक्शन को हम देखेंगे इस क्रम में। प्रथम इंस्ट्रक्शन है कि भगवान का सेवा बहुत महान है, चाहे छोटा सेवा हो चाहे बड़ा सेवा हो। ऐसा नहीं कि जो पुजारी डीटी वर्शिप करते हैं वो बहुत बड़े भक्त हैं और जो मंदिर मार्जन करता है वो छोटा भक्त है, ऐसा बात नहीं है। भगवान अब्सोल्यूट है, इसलिए भगवान का जो सेवा है वो भी अब्सोल्यूट है। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के सेवा के लिए अलग अलग सेट के भक्त लोग हैं, जैसे जो पांडा लोग हैं वो जगन्नाथ जी का पूजा करते हैं, रथ यात्रा के समय जो सेवा करते हैं वे सवार लोग आकर करते हैं। उसी प्रकार से ये मंदिर मार्जन का जो सेवा है वो लोग जो करते हैं उनका नाम है क्या, पडिचा, कोई जाति विशेष है पता नहीं, वो पडिचा लोग हैं जो कि मंदिर मार्जन करते हैं, उनका यह सेवा है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जब देखे कि हजारों की संख्या में भक्त लोग आए हुए हैं नवद्वीप से और नीलाचल से, तो वे एक शिक्षा देना चाहते थे कि भगवान का सेवा कैसे अब्सोल्यूट है, कोई भी सेवा हो। तो उन्होंने निर्णय किया कि हम गुंडीचा मार्जन हम लोग करेंगे, गुंडीचा मंदिर का सफाई हम लोग करेंगे। तो वे काशी मिश्र और सार्वभौम भट्टाचार्य से विचार किए कि हमारी इच्छा है कि सभी वैष्णवों के साथ में मिलकर के और ये मंदिर हम सफाई करें, इस साल का सेवा हम लोग करेंगे। तो बात हुआ कि तब टेम्पल कमांडर के पास चला जाए, क्योंकि वही लगाते हैं सेवा में, जो सुपरिटेंडेंट हैं टेम्पल के, उनके पास गए। सुपरिटेंडेंट टेम्पल कमांडर से पूछा गया, देखिए महाप्रभु यहां भी एक शिक्षा दे रहे हैं, महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण हैं, जगन्नाथपुरी में सब लोग उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हमें दूसरे की सेवा में बिना परमिशन के इंटरफियर नहीं करना चाहिए, अपना नाक नहीं अड़ाना चाहिए, या अपना सेवा है ठीक है। यहां पर भगवान एक शिक्षा दे रहे हैं, वे परमिशन लेने के लिए सुपरिटेंडेंट के पास गए। सुपरिटेंडेंट ने कहा कि देखिए ये सेवा हमारा नहीं है, हम तो केवल व्यवस्था देखते हैं, लेकिन जो पौडिचा जो लोग हैं वे लोग का ये सेवा है, और वास्तव में जो जिसका सेवा है, जैसे अभी जगन्नाथ जी का सेवा है, जगन्नाथ रथ यात्रा से लेकर के पूरा अंत तक ये सवार लोग करते हैं, है? भगवान को भोग लगाना, लाना, चढ़ाना, ये सब काम का काम है, उन लोगों का होता है। चाहे किसी को दर्शन करने जाना तो दोस्ती करना पड़ेगा उन लोगों से, साल भर दूसरे पंडा से करो, लेकिन रथ यात्रा के समय उन लोगों से दोस्ती करना पड़ेगा, तब आपको ले जाएंगे जगन्नाथ जी से आलिंगन करा देंगे। जो तो पौडिचा लोगों को बुलाया गया, उसका जो शिष्य थे उनसे, तो ये पांच लोग बैठ करके निर्णय कर रहे थे। जब पौडिचा लोगों ने सुना कि चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ में ये सेवा करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा, अरे तो बहुत निम्न कार्य है, ये हम लोगों के लिए है, आप तो साक्षात श्याम सुंदर हैं, आप तो भगवान हैं, आप प्रभु हैं, आपके लिए उपयुक्त सेवा नहीं है। महाप्रभु ने कहा कि नहीं, जगन्नाथ की सेवा करने की मेरी बड़ी इच्छा है। तो ना नुकुर करते हुए भी भगवान का इच्छा समझते हुए उसने अलाउ कर दिया कि ठीक है आप कीजिए। और ज्यों ही यह परमिशन मिला, निदाय गौर हरि बोल, हरि ध्वनि उत्पन्न हुई, और सब भक्त लोग जो बाहर खड़े थे सब लोग बड़े प्रसन्न हुए यह सुन करके। तब सुपरिटेंडेंट से बात किए और सुपरिटेंडेंट परमिशन दिया, और तुरंत सैकड़ों घड़ा झाड़ू का सब व्यवस्था करने के लिए आदेश दिया एक दिन पहले, क्योंकि आज सफाई करना था। तो सब कुछ आया, भगवान चेतन महाप्रभु समस्त भक्तों को बुलाए, एक गोष्ठी किए, सब लोग वहां पर थे, सब में उल्लास था। उल्लास में कोई नियम कानून नहीं होता है जब उल्लास होता है तो, लेकिन फिर भी नियम कानून इन सेंस कौन सीनियर है कौन जूनियर है, ये सब भेदभाव मिटाने का बहुत सुंदर तरीका है। प्रायः भक्तों में भेदभाव होता है कि मैं सीनियर डिवोटी हूं, मैं जूनियर डिवोटी हूं। तो जो लीडर होते हैं, दो होते हैं, एक लीडर और एक मैनेजर। मैनेजर मैनेज कर सकता है, लेकिन जो लीडर होता है, मैनेजर नियम कानून बता सकता है, लेकिन जो लीडर होता है वो उत्साह देता है, जो उत्साह मैनेजर के द्वारा नहीं प्राप्त होती है। लीडर वह है जो ऑफिस में नहीं बैठता है, बल्कि सब जगह से घूम करके मैनेज करता है। ब्रह्मचारी आश्रम में क्या हो रहा है, किचन में क्या हो रहा है, किचन में चला जाएगा ब्रह्मचारी आश्रम में चला जाएगा, पुजारी डिपार्टमेंट चला जाएगा, लाइफ मर्चेंट डिपार्टमेंट, सब जगह चला जाएगा। वह है लीडर जिसकी दृष्टि सब जगह है, वह है लीडर। और सब जो सबको बांध कर रखे वह लीडर है। तो बांध कर रखने के लिए लीडर को, नेतृत्व करने के लिए नेता को आगे स्वयं रहना पड़ेगा। जब लीडर आगे नहीं रहेगा तो कोई काम नहीं, कोई प्रोत्साहित नहीं होगा। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु बड़ा सुंदर प्लान किए कि सब वैष्णव लोग एक दूसरे से जान पहचान कर लें, चाहे नदिया वाले वैष्णव हैं, चाहे बंगाल के हों, चाहे उत्कल प्रदेश उड़ीसा के हों, सब लोग मिल करके जैसे हम लोग कीर्तन करते हैं वही बात है, भेदभाव मिट जाए। कोई सेवा करते हैं यही कार्य है। हम लोग पहले करते थे, मैराथन के बाद जाते थे, थोड़ा फुटबॉल खेलते थे साथ में सब लोग मिल करके, श्रीधर स्वामी और हम लोग कुश्ती करते थे। वो सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, वो भेदभाव नहीं था। एक साल मायापुर में था 1978 में, जयपताका महाराज सभी लोगों को लेकर जाते थे। उसमें सब एक भक्त थे, ज्यादा नहीं थे, सब डेढ़ सौ भक्त लोग। और जो पुखर है प्रभुपाद जी के समाधि के बगल में तालाब, उसमें पड़ जाते थे, पैर मेरा खींचो, सब लोग पैर खींचते थे, कहां पानी मिलाने के लिए। तो इस प्रकार से खेलते थे सन्यासी होकर के, गुरु होकर के, जीबीसी होकर के। फिर भी उसे भेदभाव कभी कभी छोड़ करके, क्योंकि उसे प्रेम की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। जहां फॉर्मालिटी रह जाएगी वहां प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। प्रेम में कोई बंधन नहीं होना चाहिए, कोई दीवार नहीं होना चाहिए, तब प्रेम का आनंद हम उठा सकते हैं। जब दीवार हो जाता है तो नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु इस दीवार को तोड़ना चाहते थे, इसलिए वे गुंडीचा मार्जन करने का प्रस्ताव रखे। दूसरे दिन सैकड़ों हजारों झाड़ू आया और वैसे ही उतनी ही मात्रा में जल के लिए घड़ा आया। महाप्रभु सभी भक्तों को सेवा बांट रहे थे। कौन व्यक्ति बाहर सफाई करेगा, कौन व्यक्ति अंदर सफाई करेगा, कौन भगवान जगन्नाथ जी का जो किचन है, जगमोहन मंदिर है, उसको सफाई करेगा, कौन कोर्टयार्ड सफाई करेगा। इस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु इंस्ट्रक्शन दिए सब लोगों को। उसके बाद उन्होंने यह भी बताया कि कोई व्यक्ति सफाई करते हुए कुछ बात नहीं बोलेगा। कोड लाइन था कृष्णा कृष्णा हरि बोल कृष्णा, बस। किसी को बुलाना था तो कृष्ण कृष्ण कहना, किसी को कहना था तो कृष्ण कृष्ण कह करके, और कुछ नहीं। तो सब नियम कानून जब बता दिया गया, उसके बाद महाप्रभु और सब लोग अपने अपने एरिया में गए और सबसे पहले झाड़ू से वे लोग मंदिर मार्जन करना प्रारंभ किए। तो मंदिर में कंकड़ थे, बालू, धूल, तिनका, सब झाड़ू मार मार करके एक जगह करते गए सब लोग और रखते गए। भगवान चैतन्य महाप्रभु ऐसा ही कर रहे थे। तदोपरांत भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने उत्तरीय में, अपने चादर में जो धूल था, मिट्टी, बालू और धूल अपने चादर में बांध करके, उठा करके और लेकर के बाहर फेंकने लगे। अब भक्त लोग देखे तो वे लोग भी अपना उतरिए उतार करके और उसमें सब धूल मिट्टी डाल करके और सब बाहर फेंकने लगे। इस प्रकार से एक बार सफाई हो गया। उसके बाद महाप्रभु ने कहा पुनः सफाई करना चाहिए बारीक भाव से, और फिर भक्त लोग सफाई करना शुरू किए झाड़ू से ही। दो प्रकार का झाड़ू होता है ना, एक मोटा वाला झाड़ू, क्या बोलते हैं है? एक सीक वाला तो पतला होता है ना है? और एक थोड़ा मोटा वाला, समझते हो ना, बाथरूम करते वाला। तो पहले उस झाड़ू से किए, बाद में पतला वाला झाड़ू से, ताकि फाइन डस्ट जो हो वो भी निकल जाए। सब निकल रहा था। महाप्रभु वहां पर सेवा तो कर ही रहे थे, लेकिन जा जाकर देख भी रहे थे कि कौन भक्त कैसे कर रहा है। ये भी लीडर का काम है, देखना कौन भक्त कैसे कर रहा है। यदि कोई अच्छा कर रहा था तो महाप्रभु से कृष्ण कृष्ण कह करके उसे प्रोत्साहित भी करते थे, वेरी गुड वेरी गुड। और जो खराब कार्य कर रहा था उसको भी कृष्ण कृष्ण कह करके चेस्टाइज करते थे, और जो अच्छा करता था उससे कहते थे कृष्ण कृष्ण कह करके हैं किसको सिखाओ। जैसे वो बहरे और गुंगे जो होते हैं ना, वो सांकेतिक भाषा में बताते हैं ना, बोलते नहीं है, तो वैसे ही वहां पर सांकेतिक भाषा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, मतलब तुम सिखाओ उसको, तुम गलत करते हो। सेकेंड टाइम जब सफाई होने लगा तो महाप्रभु ने कहा कि अब कंपटीशन होगा, जो जितना ज्यादा धूल इकट्ठा करेगा उसे प्राइस दी जाएगी, जो ज्यादा करेगा उसको खीर और लड्डू दिया जाएगा, और जो कम करेगा वह यह व्यवस्था करेगा। क्योंकि बारीकी रूप सफाई करना था। अब दस तो पहले मोटा झाड़ू से निकल गया था, अब छोटा झाड़ू यानी पतला झाड़ू से निकलना था, तो इसमें ज्यादा परिश्रम था, तो बारीकी रूप से। तो सेकेंड टाइम महाप्रभु ने यह कंपटीशन रखा। जब सफाई हो गया ऊपर से नीचे तक पूरा, हजारों भक्त लोग बाहर घड़ा का पानी लेकर के वेटिंग कर रहे थे, और महाप्रभु ज्यों कहे कि पानी मंगाइए, अब पानी आने लगा। तो पानी दीवालों पर फेंका जा रहा था, सीलिंग पर फेंका जा रहा था, तो सीलिंग से सफाई करना शुरू किए ऊपर से, बाद में दीवालों को सफाई किए, धीरे 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 क्रम से नीचे आया सफाई होते होते पानी के द्वारा। भक्त लोग लगे हुए थे पानी लाने में, तालाब से पानी ला रहे थे, कुआं से पानी ला रहे थे, हजारों घड़ा था, भक्त लोग कृष्णा कृष्णा हरि बोल करते हुए जा रहे थे, आगे जाना पीछे आना, आगे जाना पीछे आना, पानी, एक भक्त पानी ला रहा था, दूसरा खाला घड़ा खाली घड़ा दे रहा था, और सब में हर्षो उल्लास था, कोई मरोस नहीं था, रे टेम्पल का मंडल परेशान कर रहा है, किसी में ये नहीं था कि महाप्रभु क्यों कह दिए, नाचना गाना बल्कि अच्छा है क्या करेंगे, नहीं, सब में उल्लास था। एक बात, जब महाप्रभु सफाई कर रहे थे, धूल निकाल रहे थे, तो जगन्नाथ जी के प्रेम में उनके आंखों से अश्रुधारा बह रहे थे, और वे अश्रुधारा से उस सिंहासन को जहां पर जगन्नाथ जी बिराजते हैं उसको सफाई कर रहे थे, धो रहे थे महाप्रभु। ये पानी आ रहा था तो बीच बीच में धक्का लग जाता था तो घड़ा फूट भी जाता था, कितना घड़ा फूटा, फिर नया घड़ा आ गया, क्योंकि राजा का आदेश था। ये जो सेवा है, अभी इसके तुरंत पहले हुआ है एक सेवा, वह है महाराज प्रताप रुद्र की शरणागति, जिनसे महाप्रभु मिलते नहीं थे, उनके पुत्र के द्वारा महाप्रभु उनसे मिले हैं, तो प्रताप रुद्र बड़े खुश थे, जो चाहिए व्यवस्था कराते थे। अब सफाई हो रही थी, पानी डाला जा रहा था, तो भक्त लोग कभी कभी हाथी के समान हो जाते हैं पानी जब आता है तो। हाथी आप लोग देखे हैं, हाथी को पानी में छोड़ दो, खूब पानी में मजा करते हैं, तो ऐसे भक्त लोग भिंजरन जब भींग जाते हैं एक बार तो खूब पानी में मजा करते हैं। हाथी का दो पार्ट है, एक तो पानी में खूब आनंद से नहाते हैं हाथी, और बाहर जाने पर भी धूल डाल देते हैं, खैर भक्त तो नहीं करते हैं, लेकिन नहाने की बात कर रहा हूं। पानी अब आनंद था, फेंक रहे थे पानी ऊपर नीचे गिर रहा था, पानी का आनंद आ ही रहा था। कुछ भक्त लोग बड़े चलाक थे, वो चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर पानी डाल रहे थे, दूसरा व्यक्ति पी रहा था, तीसरा व्यक्ति घड़ा में ले रहा था, चौथा व्यक्ति बांट रहा था, महाप्रसाद वितरण कर रहा था, पांचवा व्यक्ति मांग रहा था, भाई तो हमको भी दे दो। इस प्रकार से उल्लास आनंद। सही में एक कर सेवा बड़ा इंपॉर्टेंट है। कानपुर में मैं कभी कभी भक्तों से कर सेवा हम लोग करते हैं, है ना विपिन, आनंद आता है। चाहे आलू का खेती करना फावड़ा लेकर के, चाहे गाय चराने जाना, बड़ा आनंद आता है साथ में काम करने से, चाहे सफाई करना। एक भक्त लोग एक दूसरे को हमेशा हेल्प करने के, और वो आनंद उसका वर्णन नहीं किया, क्या आनंद आता है। जो भक्त फावड़ा चलाना नहीं जानता है वही फावड़ा चलाता है, हैं? सीखता है, बाद में कुश्ती करते हैं, हैं? तो आनंद आता है। तो वैसे ही भक्त लोग आनंद ले रहे थे भगवान का सेवा करते हुए। भगवान का जो सेवा है उसे आनंद होता है। केवल आनंद कंद, भगवान का सेवा जो है कैसा है, केवल आनंद कंद, केवल आनंद ही आनंद की अनुभूति होती है। जो सेवा नहीं करता है या नहीं करना चाहता है, जिस दिन मन में ठान लिया कि सेवा नहीं करूंगा, उसी दिन से वह निरानंद होने लगता है, सूखने लगता है, इरिटेटेड हो जाता है, एंगर आ जाता है, वो जलता है, जलाता है, उसे दुख होती है। जब आनंद लेना है तो सेवा करना चाहिए, सेवा में आनंद आता है। और सेवा न करेंगे तब से दुख उत्पन्न हो जाता है। तो कोई कहे एक काम करना है कि आपने को समझते हैं, मैं कितना साल हो गया, 20 साल हो गया भगत हुए, है? मैं ये काम करूंगा, इस प्रकार की भावना आ जाती है। लेकिन सेवा करने से आनंद आता है। तो इन भक्तों में बहुत आनंद आ रहा था, आनंद आ रहा था, आनंद के साथ सेवा कर रहे थे। जब सब कुछ साफ हो गया तो महाप्रभु देखना चाहते थे सब साफ है कि नहीं। फिर अपने बहिर्वास से ही सब कुछ पोछा मार रहे थे, डस्टर नहीं था कपड़ा से ही, और वैसे ही सब भक्त लोग बिल्कुल चमकने लगा। महाप्रभु अवलोकन कर रहे थे और खड़े नहीं थे, घुटने के बल पर अवलोकन कर रहे थे। तब तक से एक बंगाली भक्त, उसको लगता है वो जल नहीं मिला था, वो लेट आ गया था। हाँ बहुत लोग लेट भी आए थे, तो वह चैतन्य महाप्रभु के चरणों में जल डाल करके और वह चरणामृत पान करने लगा। मैं भी पूछा, हे न काले गौड़िया एक सुबुधि सरल, प्रभुर चरण जुगे दिल घट जल। उसी समय एक गौड़ीय वैष्णव है बंगाल का, सुबुद्धि था, बुद्धिमान था, लेकिन बड़ा सरल था। बेचारा को नहीं मिल पाया वो महाजल चरणामृत, तो बुद्धिमान था लेकिन सरल, धक्का मुक्का देकर के आगे नहीं मांगने गया, पीछे था लेकिन देखा था। तो उसने अपना बुद्धि लगाया कि घड़ा का जल लेकर के चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर डाल दिया। से जल लैया अपने पान कैल, तहां देखी प्रभु मने दुख रो सहैल। तो वह जल चैतन्य महाप्रभु के चरणों में जाल करके और ग्रहण कर रहा था। चैतन्य महाप्रभु जब देखे तो उन्हें थोड़ा दुख हुआ और बाहर से क्रोध करते हुए कहते हैं, यद्यपि गोसाई तारा हैया संतोष धर्म संस्थापन लागी बाहिर महारोष। हालांकि चैतन्य महाप्रभु खुश थे, उन्हें कोई तकलीफ नहीं था, लेकिन लोगों को शिक्षा देने के लिए बाहर से गुस्सा दिखाए। शिक्षा लागी स्वरूप डाकी कहिल तहारे, यही देखो तुम्हार गौड़ियार गौड़िया व्यवहारे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी बंगाली वैष्णव में श्रेष्ठ थे, वे आचार्य थे। महाप्रभु स्वरूप दामोदर को बुलाए और कहे, स्वरूप दामोदर देखो तुम्हारा ये बंगाली भक्त क्या कर रहा है। ईश्वर मंदिर मोर पद धोवाइला, से जल अपनी लैया पान कैला।
भगवान का क्या किया इसने, बड़ा सरल लड़का मैं जानता हूं, ये क्या गलती कर दिया। कहा देख नहीं रहे हो भगवान के मंदिर में मेरा पैर धो रहा है और वही पैर का जो जल है वो पान कर रहा है। तो महाप्रभु सिर पर हाथ रख के कान पर कहते हैं, यही अपराध मोर कहां कहां होवे गति तुम्हार गौड़िया करे एतक फजती। कहते तुम्हारा ये गौड़िया वैष्णव बंगाली भक्त हमको बड़ा परेशानी में डाल दिया, इसके कारण आई डू नॉट नो व्हाट माय डिस्टिनेशन इज बिकॉज ऑफ दिस ऑफेंस। इंडीड योर बंगाली वैष्णव हैज ग्रेटली इम्प्लिकेटेड मी, पता नहीं मेरी गति क्या होगी तुम्हारे बंगाली भक्त के चलते। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य दिए हैं, गोकुलेश्वर नहीं आया, पूछ रहा था हमसे कि आप जरूर इसके विषय में बताएंगे, मैं जरूर बताऊंगा और वो परपट मैं पढ़ना चाहूंगा। इट इज सिग्निफिकेंट दैट श्री चैतन्य महाप्रभु टोल सरूप दामोदर गोस्वामी दैट बंगाली वैष्णव वाज योर गौड़ीय वैष्णव। ये जानने की बात है कि माताजी लोग बात मत करो कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी से महाप्रभु ने कहा बंगाली वैष्णवों के कि आपके गौड़ीय वैष्णव हैं। दिस मीन्स दैट ऑल गौड़ीय वैष्णव हु आर फॉलोअर ऑफ श्री चैतन्य महा चैतन्य कल्ट आर सबॉर्डिनेट टू स्वरूप दामोदर गोस्वामी। इसका मतलब कि उन लोगों के जीवीसी स्वरूप दामोदर गोस्वामी हैं, उनके अनुयायी हैं। द परंपरा सिस्टम इज वेरी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व बाय गौड़ीय वैष्णव। फिर कहा गया गुरु परंपरा जानो भालो मते, परंपरा को समझना चाहिए। गौड़ीय वैष्णव लोग इसको जानते हैं और इसको फॉलो करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु पर्सनल सेक्रेटरी वाज स्वरूप दामोदर गोस्वामी। द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ डिवोटी वाज सिक्स गोस्वामी देन कविराज गोस्वामी। ये परंपरा है चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप दामोदर, सिक्स गोस्वामी, कृष्णदास, कविराज इत्यादि। इट इज नेसेसरी टू ऑब्जर्व द परंपरा सिस्टम चैतन्य कल्ट। चैतन्य महाप्रभु के परंपरा को पालन करना यह बहुत जरूरी है। देर आर मेनी ऑफेंसेज वन कैन कॉमिट वाइल सर्विंग द लॉर्ड एंड दीज आर डिस्क्राइब इन भक्ति स्वामी सिंधु हरिभक्ति विलास एंड अदर बुक्स। भगवान का हम सेवा करते हैं, सेवा करने में विभिन्न प्रकार के अपराध हम लोगों से हो सकते हैं। जिस अपराधों का अंकन किया गया है, वर्णन किया गया है भक्ति स्वामी सिंधु में, हरिभक्ति विलास और अन्य ग्रंथों में। अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन नो वन शुड एक्सेप्ट ऑबिसेंसेज इन द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड बिफोर द डिटी। जब भगवान का पट खुला है तो मंदिर के अंदर किसी व्यक्ति को प्रणाम स्वीकार नहीं करनी चाहिए। नॉर इट प्रॉपर फॉर ए डिवोटी टू ऑफर ऑबिसेंसेज एंड टच द फीट ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर बिफोर द डिटी। यहां तक कि गुरु जी ही क्यों ना हो, यहां तक कि गुरु जी ही क्यों ना हो, यहां पर कहा गया स्पिरिचुअल मास्टर। स्पिरिचुअल मास्टर का मतलब यह नहीं कि दीक्षा गुरु हैं, शिक्षा गुरु भी स्पिरिचुअल मास्टर कहलाते हैं दोनों। यहां तक भगवान का जब मंदिर खुला हो तो किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, चाहे हमारा शिक्षा गुरु हो, चाहे दीक्षा गुरु हो, चाहे कोई गुरु हो। जब मैं ये परपट पढ़ा बहुत पहले तो गिरिराज स्वामी से प्रश्न किया कि हम लोग प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं यहां पर चाहे गुरु ही क्यों ना हो उसे प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो गिरिराज स्वामी बड़ा छात्र समक्ष समझाए कि प्रभुपाद जी आचार्य हैं, आचार्य सब नहीं हो सकते हैं, गुरु सब हो सकता है लेकिन आचार्य सब नहीं हो सकते हैं। जैसे ये चार संप्रदाय हैं, चार संप्रदाय के चार आचार्य हैं, जैसे माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बार का चार्ज, ये लोग आचार्य हैं। अन्य लोग गुरु हैं लेकिन आचार्य नहीं है, आचार्य वही है। जैसे पुष्टि मार्ग में वल्लभाचार्य हैं, वो आचार्य हैं, वैसे ही स्कान के आचार्य जो हैं वो कौन है, कौन है? श्रील प्रभुपाद की। तो श्रील प्रभुपाद आचार्य हैं स्कान के, और आचार्यो माम जानियाम, आचार्य जो होते हैं भगवान से अभिन्न है। यस्या प्रसादात भगवत प्रसाद साक्षात हरित्वेन, सब आचार्य किए जाते हैं। तो इन पर ये लागू नहीं होता है, अन्य सब पर लागू होता है। तो नॉट इट प्रॉपर फॉर ए डिवोटी टू ऑफर अबिसेंसेज एंड टच द फीट ऑफ ए स्पिरिचुअल मास्टर इन प्रोमोडिटी, दिस इज कंसिडर एन ऑफेंस, यह अपराध है। श्री चैतन्य महाप्रभु हिमसेल्फ वॉज पर्सनली द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, देयर फोर इट वॉज नॉट एक्चुअली ऑफेंस टू वॉश हिज फीट इन द टेम्पल। चैतन्य महाप्रभु भगवान साक्षात हैं और ये मंदिर में प्रणाम करना, मंदिर में पैर धोना किसी का दर्शन, ठाकुर जी नहीं है फिर भी मंदिर के अंदर भी अपराध है। However, because he was playing the part of an acharya, the Lord considered himself an ordinary human being. He also wanted to give instruction to ordinary human beings. The point is that even though one play the part of his spiritual master, he should not accept obeisances or permit a disciple to wash his feet before the deity. This is a matter of etiquette. ये हमारा शिष्टाचार्य है, इसे नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से गुंडीचा मार्जन हुआ। तदुपरांत भगवान चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि सब लोग अभी थोड़ा दूसरे मूड में हैं, इंजॉयमेंट के मूड में, तब वे नरसिंह भगवान का मंदिर सफाई कराए, उसके बाद भक्तों को इंजॉय कराना चाहते थे तो शुरू किए हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु की गुंडीचा मार्दन की। हाँ, मैं चैतन्य महाप्रभु अपने हाथ से सबको तिलक चंदन लगाए थे और मालाएं पहनाए थे सफाई होने से पहले, बाद में सबको फिश खिलाए अपने हाथ से। तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर आज नहीं होगी, बाद में, अभी सफाई करनी है।
हरे कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जो एक बार भगवान का नाम उच्चारण करता है वो मेरा भक्त है, लेकिन इधर कहा गया कि जो अपराध शून्य अपराधों के लाखों माला भी करेगा लेकिन कृष्ण प्रेम नहीं पा सकता, तो ये दोनों कैसा हम समझ सकते हैं?
भक्त हो सकता, भक्त भक्त मतलब जेंटलमैन, साधु मतलब जेंटलमैन, मनुष्य बन सकते हो कृष्ण का नाम लेकर के, लेकिन कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो अपराध शून्य हो गया। बहुजन में कर यद श्रवण कीर्तन तब उना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। जब ऐसा अपराध सुन नहीं रहेंगे हम लोग कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते। हाँ, भक्त हो जाता है, जो नाम लिया कृष्ण का भक्त हो गया, कृष्ण का हो गया, कृष्ण स्वीकार करते हैं उसको कि भक्त मेरा है। जब अपराध शून्य हो जाएगा तब, इसीलिए गुंडीचा मार्जन करो, दिल साफ करो, हो जाएगा।
हरे कृष्ण बाबू जी, जो कोयली बैकुंठ के बारे में मुझे बोलना चाहिए, जो कोयली बैकुंठ जो जगन्नाथ मंदिर के पास में जो कोयली बैकुंठ है ना, कोयली कोयली बैकुंठ, इसका नाम है कोयली बैकुंठ
भाई। नहीं काम है बोला ऐसा,
हाँ इसका बारे में कुछ बताना चाहिए।
मैं बोला नहीं, कोई मतलब कोई हिंदी है भाई हो, नहीं जगन्नाथ जी के पास अपना कोई बैकुंठ नहीं है, कहने का कोई बैकुंठ, कोई बैकुंठ का नाम नहीं है कोई बैकुंठ, ही डू नॉट हैव एनी बैकुंठ, ही नॉट रेजिडेंस ऑफ बैकुंठ। क्या कलेवर, अच्छा तब मैं नहीं जानता, तो ये बताएंगे बाद में। यानी ये प्रश्न वही करना चाहिए ये क्लास में कहा गया। जय जगन्नाथ स्वामी की, शील प्रभुपाद की, सब लोग तैयार हो जाओ।